اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اٹس ڈیسائیڈڈ نو، اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں. کون سے توک ہے؟ فہی الی الاذقان، وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ فہم مقمحون، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. اور اس کے بعد تیسری چیز، تینوں کو اکٹھا دیکھیں گے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے. ومن خلفہم سدا، اور ایک دیوار ان کے پیچھے. نتیجہ کیا ہوا؟ فاخشیناہم، تو ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے. فہم لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں سکتے یا ان کو اب کچھ سوچتا نہیں. یہ تین صفات ہیں، ذرا سے اس پہ پھر واپس غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو اپنی طرف لیا کہ ہم نے کیا یہ. یہ کیا بات ہوئی؟ جب اللہ نے یہ کچھ کر دیا ہے تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ ایسے نہیں کرتا. پہلی بات دیکھیے، لقد حقل، ثابت. جیسے ماں بچے کو کہتی نا، میں کہہ سکتی ہوں تو نہیں کبھی سدھرے گا، تیرے نصیب میں ہدایت نہیں ہے. یہ انداز ہے. اللہ کہتا ہے یہ بات ریٹن ہے، یہ لکھی گئی بات، یہ میں نے لکھ دیا، ان کے نصیب میں ایمان کوئی نہیں ہے. بھائی کیوں؟ کیا اللہ نے ایک دم میں یہ کہہ دیا؟ نہیں. وہ جیسے آپ ہی اردو میں کہتے ہیں نا کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے. دیکھیے، ایک تیلی بھی اسی بیج کو پیستا ہے نا جس میں سے تیل نکلنے کی امید ہوتی ہے. جن لوگوں کے دلوں میں، نمبر ایک، تعصب. تعصب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز میرے ماں باپ نے سکھا دی، جو میرے خاندان قبیلے نے سکھا دی، وہی بہتر ہے. یاد رکھیے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب. تین جملے لکھ لیں. تعصب ہوتا ہے، اس کو ہدایت نہیں ملتی. میرا قبیلہ، میرا وہ فرقوں کو روتے رہتے ہیں اور قبر میں پہنچ جائیں گے اور وہاں کسی فرقے کا جواب نہیں آئے گا. سوال جواب قبر میں تین ہی ہے، من ربو کا، من رسولو کا، ماں دینو کا، بس دیٹس اٹ. تمہارا اللہ کون تھا، تمہارا رسول کون تھا، اور تمہارا دین کیا تھا؟ اللہ رب ہے، رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دین اسلام ہے. چھوٹا سا جواب ہے، یاد کر لے، وہاں جا کے قبر میں منکر نکیر کے سامنے بول دیں گے. لیکن تعصب آ جاتا ہے. دوسری چیز، ضد. چھوٹا سا بچہ بھی جب ضد میں آ جاتا ہے نا تو بھوکا ہوتا ہے لیکن دودھ نہیں پیتا، نیند آئی ہوتی ہے لیکن وہ نیند سے لڑ رہا ہوتا ہے. اصل میں ضد ہے. جس بندے کے اندر یہ ضد آ جائے گی نا کہ میں نے نہیں بدلنا، یاد رکھیے پھر اس کا حال کچھ اسی قسم کا ہوگا. یہ ضدی تھے، ان کو ضد چڑھ گئی تھی کہ یہ کیا، وہ ہمارے قبیلے کی بجائے کسی اور قبیلے میں کیوں آ گیا، ہماری جماعت کی بجائے کسی اور جماعت میں کیوں آ گیا. اور تیسری چیز، ہٹ دھرمی. ہٹ دھرمی کیا ہوتی ہے؟ میں نہیں کرنا، ڈھیٹ پن. کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈھیٹ، چونکہ میں نے کہہ دیا تو میں نے کہہ دیا، اب مانے کا کھانا کھا لو، نہیں کھانا نہیں، مانے کا چل جاؤ چلے جاؤ. اب ضد آ گئی، اب بھوک لگی بھی اندر، دل چاہ رہا کھا لوں، چلو جو پکا وہی کھا لوں، پر اب چونکہ کہہ دیا تو اب نہیں پیچھے ہونا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب آ جاتا ہے تو ایسے لوگ عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو جاتے ہیں. یہ لوگ ہیں پھر نصیحت پر کان نہیں دھرتے. اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے آ جانے، حجت کے تمام ہو جانے پر بھی یہ حق کی دشمنی ہی اختیار کرتے ہیں. اصل میں ان پر ان کے اپنے اعمال کی شامت مسلط ہو جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوتی. آگے ہم پڑھیں گے کہ تم تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے. دوسری بات، اگلی آیت میں دیکھیے، توک. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دی ہیں. انا جعلنا فی آناق، آناق جو ہے نا انق کی جمع ہے، گردن کو کہتے ہیں، نیک. اغلالن، غل سے یا غول سے، تینوں طرح آتا ہے، پاؤں کی بیڑیاں، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اور گردن کے توک. یعنی یہ تین جگہ پہنے جاتے ہیں، پاؤں میں پہن لیں گے تو بیڑیاں، ہاتھوں میں پہنیں گے تو ہتھکڑیاں، اور گردن میں پہن لیں گے تو توک. ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دی. کہاں؟ فہیہ الی الاذقان. اذقان جو نا ذقن سے، ذقن کہتے ہیں یہ تھوڑی کو، इंग्लिश में इसको चिन कहते हैं, ये जो नीचे का हिस्सा होता है होंठों के नीचे, यानी वो यहां तक उनका तौक पहना हुआ। अगर आप मेरे हाथ को देखें ना, एक ये कि कोई इधर गर्दन में रस्सी डाल दें, चलो थोड़ी सी है ना, अब गर्दन में रस्सी होगी ना तो मेरी गर्दन ऐसी होगी लेकिन फिर भी मैं थोड़ी हिला सकती हूँ। लेकिन वो जो आपने कभी किसी बीमार को पहना हुआ देखा होगा, कॉलर पहना देते हैं बैक बोन का जिनका ऑपरेशन होता है, तो यहां से लेके अगर यहां कोई पहना देंगे ना तो अब मैं हिला ही नहीं सकती, अल्लाह ना करे किसी के से ऐसा हो। लेकिन जैसे प्लस्तर नहीं डाल देते, ये ठोड़ी तक आना, फहो मुकमहुन, और मुकमहुन कोमहुन से सर उठा के जीना, सर उठा के खड़ा होना। कैसे? जैसे ऊंट को बीमारी लगती है ना तो उसकी गर्दन में एक, जैसे आप कहते हैं बल पड़ गया, कड़ल पड़ जाते हैं ना, इसी तरह से अल्लाह ताला ने इनके अंदर का जो किब्र और तकब्बुर था ना उसको यहां मिसाल दे दी। किस चीज से? तौक से, हठधर्मी का तौक है ये, जो हक की कबूलियत के रास्ते में रुकावट है। सर उठाकर खड़े हैं और जकड़े हुए हैं, ये किस चीज की अकड़ है? तकब्बुर की, अपने आप को बड़ा समझने की। आपका क्या ख्याल है कि अबू जहल को नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं? उतबा, शैबा, रबिया इतने करीब थे इस्लाम के, अपनी कई निजी महफिलों में ये कह चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चे हैं। एक दो ने तो कलमा भी पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपने किसी दोस्त की खुशी पे दोबारा नबी सल्लम के मुंह पे आके थूक भी दिया। पता उनको था, लेकिन क्या चीज थी जो नहीं आने देती थी? खानदान, बिरादरी, बाप दादा। क्या हमारे बाप दादा गलत है जो आज तक वो कह रहे थे? क्या वो गलत कह रहे थे? लो अब हम उनको छोड़ के इधर आ जाएं, लोग तो हमें जीने नहीं देंगे, हमें तो बातें सुनने को मिलेंगी, ये होगा वो होगा। अल्लाह सुबहान तला कहते हैं खत्म, और वजालना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन। ये दीवारें कौन सी हैं? अब इमेजिनेशन में लाएं, यही ले लीजिए, ये जो हुजरा है ना मस्जिद का जो मेंबर होता है, आप देखिए इसके पीछे दीवार है ना, इसके बीच में कोई खड़ा हो हम में से और एक दीवार उसके बिल्कुल आगे खड़ी कर दी जाए, घुटन का एहसास होता है, दम ना घुट जाए, किसी छोटी सी दीवार में बंद कर दिया जाए। कई लोग लिफ्ट में नहीं बैठते, अल्लाह की अच्छी खासी खुली होती है। अल्लाह कहते हैं ऐसे इनको बीच में रखे ना, एक दीवार इनके पीछे, पीछे से आगे क्या मतलब है ना, पिछली तारीख से सबक लेते हैं और आगे क्या ना मुस्तकबिल के नताइज पे गौर करते हैं। और ये किस चीज की दीवार है? तासुब की दीवार है, हठधर्मी है, तकब्बुर की वजह से गलत फहमियों ने इनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए हैं, खुली हकीकतें इनको समझ नहीं आती, कुरान के खुले खुले लफ्ज पढ़े में नहीं समझते। जिस बंदे की तबीयत सलीम होगी, तासुब नहीं होगा उसको, तो ये सब कुछ समझ आएगा। तो इससे पता क्या चला? अब आ जाइए वापस हम इस पे देखते हैं, ये कौन लोग हैं? कुरान सबके लिए हिदायत है, हुदल लिन्नास, पर आपका क्या ख्याल है हर कुरान पढ़ने वाला हिदायत पा जाता है? वल्ला ही नहीं पाता। और बदतरीन है वो शख्स जो कुरान पढ़ के हिदायत ना ले। कैसे? आप कहते हैं ये कैसे? बस आप हमें कहते हैं कि आप नूरुल कुरान के तहत एक कोर्स इस शहर में शुरू करा दें, बस एक जमानत चाहिए हमें आपसे, एक गारंटी लेनी है आपसे कि हर सिस्टर जो उस कोर्स को करेगी ना, तो जिस दिन वो उससे फारिग होगी तो वो हर एक उसमें से हिदायत याफ्ता हो चुकी होगी। तो मैं तो हैंड्स अप कर दूंगी, सॉरी, हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, नबी ना ले सके। याद रखिए, हिदायत का रास्ता दिखाना नबियों का काम है और आज के दौर में मुबल्लिगीन का काम है कि लोगों को बताएं ये ठीक है, ये गलत है, ये राइट, ये रॉन्ग, बट कोई चला नहीं सकता। इन्ना अलैना लल हुदा, हमारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, वमा अलैना इल्लल बलाग। लोग कहते नहीं फुलां बड़ी अच्छी बात करता है, उसकी बात बड़ी अच्छी समझ आती है, लिख ले, हिदायत का ताल्लुक बुलाने वाले के बोलने पे नहीं है, क्योंकि अगर बोलने पे और स्टाइल पे और खूबसूरत लफ्जों के चुनाव पे होता तो नबियों से ज्यादा कौन अच्छा बोलता था, नबियों से ज्यादा नबतुल्ला कौन बोलता था? हमारे प्यारे नबी तो जवामियुल कलिम थे, एक लफ्ज में एक जुमले की बात कह देते थे, आपसे ज्यादा तो नरम बात ही कोई नहीं करता था, आपसे ज्यादा हकीम ही कोई नहीं था। लिखिएगा, नबी क्यों ना वक्त का सामने आके बैठा हो, जब तक लेने वाला हिदायत लेना नहीं चाहता देने वाला उसको दे नहीं सकता। ये ऐसे ही जैसे आप बेहतरीन खाना बना के बच्चे के लिए लेके बैठे लेकिन बच्चा मुंह ही नहीं खोल रहा, आप उसके मुंह में चम्मच डालती हैं वो उगल देता है, थूक देता है आपके मुंह पे, आप कहते हैं चलो भाग जाओ इसने खाना ही नहीं है। कौन नहीं खाता? जिसको भूख नहीं होती, भूख नहीं होती, बिलीव मी, तलब ही नहीं है, अभी भूख ही नहीं जागी। अभी पता ही नहीं लेते कि यार छोड़ते क्या। बस आप जैसे यहां भी बैठे हैं और अभी मैं आपसे कहूं कि चलिए यहां से उठते हैं और दौरे कुरान के लिए चलते हैं, तो आप क्या सोचेंगे, बिस्मिल्लाह घर जाके क्या कर लेना हमने, और सो के वो राहत तो मिलनी नहीं है जो कुरान पढ़ के मिलनी है। चलते यहां हमने 1 घंटे में भी 1 रुकू करना है, वहां हमने 1 घंटे में 1 रुक से ज्यादा बल्कि 2.5-3 घंटे में पूरा पारा कर लेना। कौन है जो इनकार करेगा, कोई भी नहीं करेगा। जिसको इस चीज की वैल्यू पता है वो कहेगा जितनी समेटनी है समेट लो, ये दौलत कोई हर वक्त थोड़ी बढ़ती है, ये रमजान की घड़ियां हैं इसमें ले लें। तो बात क्या है कि जिनके दिलों में तलब नहीं होती, वक्त का नबी भी उनको खैर नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा एक अच्छे मुबल्लिग का काम क्या है, तलब को उभारे, लोगों की भूख जगाए। बहुत अरसा कुछ ना खाए ना तो भूख मर जाती है, बीमारी से बंदा उठता है तो फिर 2 लुक में खा के पेट भर जाता है क्योंकि अभी नया नया बीमारी से उठा है। इस वक्त उम्मते मुस्लिमा की कुरान की भूख मिटी हुई है, इसको उजागर करें। खाने की दावत पे कितने होंगे, गाने की दावत पे कितने होंगे, मेहंदी की दावत पे, उबटन की दावत पे, बाजारों के रश देख लीजिए, ईद की तैयारियों को देखिए। अल्लाह ताला कहते हैं बस वहाँ नही, बराबर है उन पर, यकसा है इनके लिए। आ अनजरता हूं, ख्वा आप उनको खबरदार करें, वॉर्न करें, डराएं, आगाह करें, अम लम तुंजिर हूं, या फिर आप ना उनको डराएं कुछ ना उनको कहें, ला यूमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। सीधी सी बात है, यानी इनके लिए यकसा है तुम इनको खबरदार करो या ना करो। क्या मतलब, जिसको आप कहते हैं ना कि इनको कहना या ना कहना बराबर है, तो क्या इसका ये मतलब है कि फिर तबलीग करना छोड़ दो, पढ़ाना छोड़ दो, बुलाना छोड़ दो? हरगिज इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यह कि तुम्हारी तबलीग हर बंदे के कान तक पहुंचती है, मगर कुछ लोग जिनका जिक्र ऊपर हुआ है वो फायदा नहीं लेंगे, और जिनको तलब है वो तो उचक के ले जाएंगे। जब कुछ लोगों को देखो कि इनकार उनके दिल में तकब्बुर है, बड़ाई का एहसास है मुखालफत पे, तो पीछे ना पड़ो, बस पैगाम दे के आगे चलो, और ना उनके उस तरीके से दिल शिकस्ता हो, मायूस होकर काम भी ना छोड़ दो। क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि इसी बड़े मजमे में से जो कहीं दूर बैठे हैं उनमें से कोई एक बंदा नसीहत कबूल करके आखिर रास्ते आ जाए, तुम्हें तो फायदा होगा। इसीलिए अगली आयत में क्या फरमाया, इन नमा तुनजीरा, बेशक आप तो डरा सकते हैं। किसको? अब बड़ी प्यारी बात है, किन लोगों को टारगेट बनाना चाहिए, किन लोगों पे मेहनत करनी चाहिए, किसी भी इंसान को, किसी भी दीन की तरफ बुलाने वाले को जिसमें ये खूबियां, कौन सी? नंबर एक, मने तबा जिक्र, जो नसीहत की पैरवी करे, नंबर एक पहली खूबी। जिन लोगों को जाके तबलीग की जाए, इंतजार किया जाए, दीन की दावत दी जाए, वो कौन है? मने तबा जिक्र, जो नसीहत की पैरवी करें, जो नसीहत को लेकर अकड़ने ना लगे। और दूसरे बखशियर रहमान अबिल गईब, और जो बिन देखे रहमान से डरे। फबशिर हु बि मगफिरत व अजरिन करीम, तो इसे मगफरत और अजरे करीम की बशारत दे दो। दो खूबियां लिख लें। अगर कोई बंदा किसी जगह कोने में छुपा भी बैठा है ना, उस तक भी हिदायत का एक बोल जाएगा सिर्फ, और वो चल पड़ेगा। क्यों? उसको पता है कि ये चीज वो है जिसकी मुझे तलब थी। और अल्हम्दुलिल्लाह दीन के रास्ते में हमें दोनों तरह की चीजें मिलती हैं, ज्यादा तो मुझे अल्लाह के हुक्म से दूसरी किस्म के लोग मिलते हैं। कल मुझे किसी का बहुत प्यारा लेटर मिला, यानी उनके लिए ये दौरे कुरान की दावत ऐसे नहीं थी कि हर गली कोने से उनको फ्लायर दिख रहा है, या उनको पता नहीं वो कहाँ से आ गई, कहाँ से उनको दावत मिल गई, और किसी अननोन ने उनको बताया, और वो कहती गोया मैं तो पहले से तैयार थी, और अब वो 2-3 दिन से वो पारा सुन रही है। जो खूबसूरत उनकी शेयरिंग थी ना, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ, आपका दिल खुश हो जाए। मैंने कहा बस ये एक ही काफी थी जिनके लिए मैं आई हूँ, अगर इनके घर में चेंज आ रहा है, इनको इतना फायदा हो गया 2-3 पारों से, तो मेरा क्या क्या। तो याद रखिए, दिल में इनकार हो, तासुब हो, एक होता है नसीहत नहीं सुनता। अच्छा, मजे की बात है कि दीन की बात नबियों ने पेश की। 2 किस्म के लोग हैं, आज भी ऐसे ही होता है। एक वो है जो खुद को बड़ा समझते हैं, तकब्बुर, हमें नहीं जरूरत इनकी, हमें सब आता है, हम तो पहले से पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, बड़े खतरनाक हैं, वो कभी भी खैर नहीं लेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनके दिल में डाउट्स होते हैं, शक होते हैं, पता नहीं इनका अकीदा ठीक है। अच्छा, बाप दादा तो ये करते थे, ये तो वो है, अच्छा वो आके ना वोकल होते हैं, महफिल में आए बैठ के बीच में बोल लिया, अच्छा जी ये बताएं नबी बशर थे कि रसूल थे, कोई आके बोल देगा, अच्छा जी ये बताए कि सजदा ऊंचा करना सही कि नीचा, यानी जो उनको शक होते हैं ना वो महफिलों में आके पूछते हैं। ये बहुत सिंपल लोग होते हैं, जो शक वाले दिल के साथ सुने और आके अपना शक क्लियर करे ना, अल्लाह उसको हिदायत दे देता है। पर कुछ लोग दिल में रख के बात को गिरा बांध लेते हैं और इस तकब्बुर में रहते हैं कि हमें जरूरत नहीं, उनको हिदायत नहीं मिलती। मसलन देखिए ना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, कितने शक थे उनके दिल में, आपने सुना मन का कबूल है इस्लाम का वाकया, इस्लाम के दुश्मन थे, जो मुसलमान हो जाता था उसको मरवाते थे पिटाते थे। एक दिन कहा कि इस शख्स को खत्म ही ना कर दूं जिसकी वजह से हमारे शहर के अंदर बेचैनी फैली है, तलवार लेकर निकले, नंगी तलवार और हाथ उमर का, अल्लाह अकबर, किधर जा रहे हो, कहा जाके उस मोहम्मद नाम के शख्स को कत्ल करने लगा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा उनको छोड़ो पहले अपने घर की फिक्र करो, तेरी तो बहन और बहनों ही मुसलमान हो गए, कहा अच्छा चलो पहले उसको मार के आता हूँ, कहा कि उमर के लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अब उमर गए अपनी बहन के घर और तलवार से टक टक टक, जब उमर की आवाज सुनी बहनोई तो छुप गए अंदर जाके, अशरा मुबशरा में से थे पर अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती। एक आध और साहबी तो उन्हें कहा उमर आए आप, खैर नहीं, बहन बैठी रही, उमर आए क्या हो रहा है, कहा कुरान पढ़ रही हूँ, दिखाओ मुझे क्या पढ़ रही हूँ, कहा तुझे तो नहीं दिखाऊंगी, तू नजस है अभी, तू मुशरिक है, जा गुसल करके आ पाक हो फिर दिखाऊंगी, कहा ये आज तू इतना बोल कैसे रही है, आज तक तो तू मेरे आगे बोली नहीं, कहा मेरे पास हक है, अच्छा हक है दिखा क्या है, कहा तू पढ़ के तो सुना, वो कहते ना कि तेरे कुरान पढ़ने ने उमर के दिल की हालत बदल दी, फारसी का शेर है अल्लामा इकबाल का कि औरत उठ कुरान को पढ़, कि तेरे कुरान पढ़ने ने उमर के दिल की हालत दगरदू कर दी, आज की औरत ही मर्द को कुरान पढ़ाएगी, याद रखिए, आज की माँ आज की बहन आज की बेटी अपने बाप भाई शौहर को कुरान पढ़ाएगी, ये हमेशा से हुआ, जब अल्लाह ने किसी जगह दीन को रिवाइज कराना होता है ना अल्लाह औरतों को उठाता है, क्योंकि औरत में फर्टिलिटी है, औरत पैदाइश का जरिया बनती है ना, मर्द क्यों नहीं पैदा करते, औरत के अंदर गुदाज है, औरत के अंदर जज्बात है, तो उमर ने फिर क्या कत्ल करना था, खुद ही कत्ल हो गए, कहा चल मुझे लेके चल उधर, कहा चल, गुसल करवाया और नबी के पास ले गई और दूर से सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी के साथ बैठे हुए थे, कहा अल्लाह के नबी उमर आ रहा है और उसके अंदर हाथ में तलवार भी है, कहा फिक्र नहीं करो उमर आ नहीं रहा, उमर बुलाया गया, और सहाबी ने क्या कहा कि मैं तो पहले ही सुन रहा था सुबह के अल्लाह के नबी कह रहे थे अल्लाह या इस्लाम से उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हश्याम को से इस्लाम को मदद, यानी अबू जहल और उमर के लिए इकट्ठी दुआ मांगी थी आपने, उमर के लिए दुआ क्यों कबूल हुई, डाउट्स थे तकबर नहीं था, लिख लें, दीन का शक दूर हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, बट अबू जहल के अंदर तकबर बड़ा बड़ा था, जिस बंदे में आजजी नहीं है वो कुरान पढ़ के भी बेकार है, तो अल्लाह तआला कहते हैं अच्छा फिर आप ना तबलीग करें, उन्होंने तो लेना ही नहीं फायदा, कहा नहीं उनके लिए बराबर है, सवाउन अलैहिम, तुझे तेरा अजर मिल जाएगा, तू काम अपना करता रहे और इनको छोड़ दे, और ऐसे लोगों में से कोई एक भी आ गया तो बड़ी बात है। और उसके बाद देखिए आखिरी आयत है जो नस्लों की फिक्र लगाने वाली आयत है, पीछे बाप दादा की गफलतों की बात थी, अब मुझे आपको एक पैकेज दिया जा रहा है, इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमू व आसारहुम, हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं और जो कुछ अफाल उन्होंने किए हैं वो हम सब लिखते जा रहे हैं, वह आसार हूं और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब्त कर रहे हैं, क्योंकि वह कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। बड़ी अहम आयत है, इसाले सवाब के मौजू पे जब भी दर्स होता है मैं इस आयत को चूज करती हूँ, बल्कि एक सीडी बहुत लोगों तक पहुंची थी अल्लाह के हुक्म से इसाले सवाब के तरीके, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब कोई फौत हो जाता है तो हम उसको कैसे फायदा दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी आयत को 1 घंटे 1.25 घंटे में डिस्कस किया था, कई तरीके उसमें थे कि कोई मर जाए तो उसको कैसे फायदा दें, अगर आपको मौका मिले तो जरूर उससे फायदा उठाएं। यहां इससे क्या पता चलता है, इंसान का नामा अमाल 3 किस्म की एंट्री से भरा हुआ है, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे नामा अमाल के अंदर 3 किस्म की चीजें दर्ज हो रही हैं। नंबर एक, हर शख्स जो कुछ अच्छा या बुरा अमल करता है वो अल्लाह के दफ्तर में लिखा जाता है, یعنی آپ کس وقت اچھا کام کر رہی ہیں یہ لکھا جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ برا کام کرتے ہیں تو وہ بھی لکھا جاتا ہے. دوسری چیز آپ کا اور میرا اپنے ارد گرد والوں پر جو اثر پڑ رہا ہے نا وہ لکھا جاتا ہے. دیکھیے ابھی یہاں بیٹھے ایک سسٹر خوشبو لگا کر آئیں، تھوڑی دیر میں ہم سب تک ان کی خوشبو پہنچ جائے گی، اور کوئی ایسی سسٹر ہیں جن سے پسینے کی بو آ رہی ہو تو تھوڑی دیر میں ہم سب پہ پسینے کی بو آئے گی. اسی طرح ہم میں سے ہر شخص اپنے ارد گرد، اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنی دوستیں، اپنے سسرال، اپنے بچوں پہ ایک اثر چھوڑ رہا ہے. ہم اچھے ہیں تو اچھا چھوڑ رہے ہیں اور برے ہیں تو برا چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ زمین کے وہ ٹکڑے جہاں پر ہم بیٹھ کر اچھا یا برا کام کرتے ہیں نا، وہ چیزیں ہمارے امپریشنز لے رہی ہیں، یعنی افیکٹس، امپریشنز، اور اسی طرح سے آخرت میں ہمارے نامۂ اعمال میں اچھی بری چیزیں جا رہی ہیں. مثلا ایک چیز سمپل ہے، جو کام اچھا کریں گے یہاں وہاں جا کے اس کا اجر مل جائے گا، برا کریں گے وہاں جا کے برا مل جائے گا. آخرت کا معاملہ تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شک نہیں. اس ایک آیت پہ میں نے اپنی ابتدائی سفر میں بے شمار دفعہ درس دیا ہوا ہے. ہماری اپنی پرانی ویب سائٹ پہ شاید 3-4 لیکچر صرف اس ایک آیت پہ تھے. ایک ٹاپک تھا بڑا مشہور، واٹ ایم آئی لیونگ بیہائنڈ، میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہی ہوں. تربیت اولاد پہ لیکچر، تو وہ بی سی پہ تھا. کیونکہ ہمارے نامۂ اعمال میں جو آگے جا رہا ہے وہ تو ہم وہاں جا کے دیکھیں گے. اس دنیا میں جو ایک سب سے بڑی چیز ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں وہ اپنی اولاد ہے. یاد رکھیے، اولاد انسان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہوتی ہے. آپ کا میرا اکاؤنٹ میری موت کے بعد بند ہو جانا ہے، پھر لوگ جو مرضی پڑھ لکھ کے بھیجیں، مجھے نہیں پہنچنا کیونکہ میری کاپی بند ہو چکی ہے. بٹ میری اولاد جو کرے گی نا وہ پہنچے گا. میں نے کسی کو علم سکھا دیا، اچھا علم، اس نے اس پہ عمل کیا، وہ مجھ تک پہنچے گا. یا میں نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دیا، کوئی نیکی کا کام کر دیا، اس کا اثر جائے گا. اس کے علاوہ باقی چیزیں دوسری طرف ہیں. مجھے آپ کو اس وقت، آج اس چھوٹے سے سیشن کے بعد، خود سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا میں اپنے بچوں کو اس انسانیت کے حق میں پھول بنا کے چھوڑ رہی ہوں یا کانٹے جا رہی ہوں. جو آج پھول بو رہا ہے نا، کل پھولوں کی خوشبو اس کی قبر میں آئے گی، اور جو آج کانٹے بو رہا ہے تو وہ کانٹے بھی وہاں ہوں گے. ہماری وجہ سے خیر پھیل رہی ہے، یہ ہماری قبر کے پھول ہوں گے. اور اگر اللہ نہ کرے دنیا میں بیٹھ کر صرف غلط چیزوں کی پرموٹ کر رہے ہیں تو آخرت میں جا کے پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا. تو کیا پتہ چلا آج ہم نے کیا سیکھا؟ شعور کے ساتھ دیکھیے گا کہ ہمیں زندگی کو ایسے نہیں گزارنا. پہلی بات، قرآن کی اہمیت، اس قرآن کو اپنی زندگی میں جگہ دیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور ان کے تحفے سے بھی محبت، اور ان کے طور طریقوں سے بھی محبت. پھر اگلی بات کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہی فکر لگ جانی چاہیے کہ ہمارے بعد کیا ہوگا. اس کے لیے پھر قرآن کی دعوت ہے. اگر آپ اسی ورک بک کے ساتھ دیکھیے تو اس کے پیج نمبر 19 کے اوپر ایک چیک لسٹ ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہر چیک لسٹ آپ گھر جا کے آرام سے کرتے ہیں، اور یہاں شروع میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، پچھلی چیک لسٹ کو، کیونکہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. مثلا اب یہ کچھ تو سن لیا، کریں کیا؟ نمبر ایک، اب قرآن مجید سیکھنے کے لیے میں نفس کے کسی دھوکے میں نہیں آؤں گی. نفس کے دھوکے کیا ہوتے ہیں؟ سستی، سست ہے، نیند، سونا چاہیے. نفس کا اور دھوکا کہ میں بیٹھ نہیں سکتی اتنی دیر، مجھے سمجھ نہیں آئے گا، میرے پاس رائڈ نہیں ہے. ان سب دھوکوں سے نکل کر بولیں مجھے سب کچھ کرنا ہے انشاءاللہ. پھر دوسری چیز، میں نے وقت نکالنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنی ہے کہ وہ مجھے سرخرو کر دے. جہاں کوئی کام آپ کے لیے مشکل ہو، کیا کہیں؟ اے اللہ اس کو آسان کر دے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. کہ اللہ کوئی کام دنیا میں آسان نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تو آسان کر دے. تو اللہ سے مدد مانگے، ہر کام اللہ تعالیٰ آسان کرنے کو تیار ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا میرے دل کو یقین ہے؟ نمبر ایک، قرآن مجید حکمت بھری کتاب ہے. گھر جا کر دل کو ٹٹول کے ان چار میں سے کسی ایک خانے میں یس نو کیجئے گا، اور اگر یقین نہیں ہے تو سوچئے کیوں نہیں ہے. اس کے اندر کہ ابھی اس کو اتنا جانتے ہی نہیں ہے، انشاءاللہ غور و فکر کریں گے. دوسری بات، قرآن مجید کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں، सच आज की नस्लों के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अल्लाह ताला उनके डॉट्स निकाल दे। तीसरी चीज, क्या मुझे यकीन है कि कुरान मजीद काबिले अमल किताब है? क्या हम ये तो नहीं कहते कोई नहीं अमल वाली, आज के दौर में अमल हो ही नहीं सकता जी। फिर कुरान मजीद हर दौर के तकाजों के ऐन मुताबिक है, यकीन है आपको मुझे? कुरान मजीद गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करदा है। कुरान मजीद इसलिए नाजिल किया गया कि गाफिल इंसानों को खबरदार करे। कुरान मजीद की दावत पर वो लोग ईमान नहीं लाते जो फैसले अजाब के मुस्तहिक हो चुके। क्या मेरे दिल को यकीन है कि कुरान मजीद की रहनुमाई कबूल ना करने वाले जिद, हठ धर्मी और तकबर में मुबतला है? क्या मेरे दिल को यकीन है कुरान मजीद की रहनुमाई कबूल ना करने वाले पिछली तारीख से सबक नहीं लेते और मुस्तकबिल के नताइज पे गौर नहीं करते? क्या मेरे दिल को यकीन है कि कुरान मजीद की रहनुमाई कबूल ना करने वालों के लिए यकसां है कि इन्हें खबरदार करें या ना करें, ये नहीं मानेंगे? क्या मेरे दिल को यकीन है कि कुरान मजीद की दावत वही कबूल कर सकता है जो बेदेखे खुदाए रहमान से डरे, जो नसीहत की पैरवी करे? कुरान मजीद की दावत कबूल करने वालों के लिए मगफरत और अजरे करीम की बशारत है, और दुनिया में मेरे किए हुए हर काम को अल्लाह ने लिख रखा है। मैंने अपनी जिंदगी के हर अमल का अल्लाह ताला को हिसाब देना है, और कुरान मजीद की रहनुमाई से फायदा उठाकर ही मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकती हूँ। ये सारे पॉइंट्स आपने बाद में इस चेकलिस्ट की रोशनी में देखने हैं, और फिर अपने लिए भी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको मुझे इस किताब से महरूम ना करे और हम सब इस दुनिया से सुरखरू होकर जाएं, खैर के साथ, आफियत के साथ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बि रहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين